नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायशुभदेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8 इसके ऊपर हम लोग सत्संग करेंगे। श्लोक ब्लैक बोर्ड में हम लोग आवृत्ति करेंगे। अथ कदाचिं निवास पानीय दमिणात् अनेक आत्मोपजीवन अभिनिवेश इतस्याम संसाराटव्याम इतस्ततः परिधावति। अथ कदाचिन् निवास पानीय द्रविणाद्य अनेक ठीक है पानीय द्रविण अनेक आत्मोपजीवन अभिनिवेशयेतस्याम संसाराटव्याम इतस्ततः परिधावति। शब्दार्थ अथ इस प्रकार कदाचित कभी कभी निवास वासस्थान पानीय जल द्रविण धन आदि इत्यादि अनेक विविध प्रकार के आत्मोपजीवन जो देह तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं अभिनिवेश पूर्णतया लीन इतस्याम इस संसार अटव्याम विशाल वन के सदृश इस भौतिक जगत में इतस्ततः इधर उधर परिधावती चारों ओर दौड़ धूप करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कभी कभी अबद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। आवृत्ति करेंगे। कभी कभी यह बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन संग्रह करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। तात्पर्य, जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है कि निर्धन बणिक जंगल में इसलिए जाता है कि वहां उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें लाकर वह नगर में लाभ सहित बेचेगा, किंतु अपनी देह तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वह मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज में रहता है। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता भौतिक क्रियाकलापों में रहती है। जीवन के उद्देश्य को न जानते हुए भौतिकतावादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ता है। प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है और वह अधिकाधिक उलझता जाता है। वैसी स्थिति उत्पन्न कर लेता है जिसमें उसे अधिकाधिक आराम की जरूरत रहती है। भौतिकतावादी को प्रकृति के रहन सहन का मर्म ज्ञात नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 में इसकी पुष्टि की गई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। लोभ के कारण जीवात्मा अपने मन में अधारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार वह फंस करके विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। तो इस अध्याय का शीर्षक है भवाटवी। भवाटवी का अर्थ होता है भव, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भव कहा गया है। ये भव रोग है, इसीलिए लोग बोलते हैं भव सागर से पार हो जाए। भव सागर, भव सागर कोई सागर नहीं है वास्तव में, जैसे अरब सागर है निकट में, वैसा कोई सागर नहीं है। भव सागर का अर्थ होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो भौतिक दुख है, ये जो भव है वो सागर की तरह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई पारावार नहीं है, इसको हम तैर करके पार नहीं हो सकते हैं, इसको पार करने के लिए नौका की जरूरत है। अगर कोई जहाज मिल जाए तो हम समुद्र को पार कर सकते हैं। तो भवाटवी भी विशाल है, जैसे जंगल होता है, कभी कभी व्यक्ति ऐसे घने जंगल में फंस जाता है जहां चारों तरफ अंधेरा रहता है, जंगल नहीं दिखाई देता है। आप किधर जाएंगे उसका कोई मार्ग सूझता नहीं है, किस रास्ते से हमें जाना है। कभी कभी ऐसे जंगल में लोग फंस जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक विशाल जंगल है सतपुड़ा, सतपुड़ा के जंगल आप लोग सुनेंगे, सतपुड़ा का जो जंगल है बहुत घना है, आज तो कुछ कट गया है, लेकिन इतना घना होता है कि सूरज का प्रकाश भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। तो उसी तरह ये भवाटवी जो है, संसार रूपी जो जंगल है, इतना घना है और इसमें कुहरा भी है कि आदमी अंधेरे में पहुंच जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में जीव जो है उलझ करके इसमें दुखी हो जाता है। जब कोई उसको ज्ञान देता है, अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजन सला कया चक्षुर उन्मिलितम, जब उसको ज्ञान का चक्षु मिल जाता है तो जंगल से निकल सकता है, लेकिन जब तक अंधेरे में रहेगा तब निकलना असंभव है। तो भवाटवी, और भवाटवी में अनेक दुर्दांत जीव जंतु भी हैं, शेर हैं, भालू हैं, बाघ हैं, दंश हैं, मशक हैं, सर्प हैं, भिक्षु हैं, अनेक खूंखार जानवर भी हैं, अनेक कटीली झाड़ियां हैं, अनेक ऐसे कंकरीले मार्ग हैं जिस पर चलना भी बड़ा कठिन होता है, तो इस भवाटवी से कैसे कोई पार हो सकता है। हम सभी भवाटवी में हैं, इसे पार होने के लिए अगर किसी को ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो उसे वो पार हो सकता है। जैसे समुद्र में कोई फंस गया है, उसको एक नौका मिल जाता है तो उसे पार हो जाता है। मान लीजिए किसी कारण कोई समुद्र में गिर गया या समुद्र में चला गया, ऐसे बड़ी बड़ी लहरों में फंस गया, मान लीजिए कोई नहाने के लिए जाता है, बड़ी लहरों में फंस जाता है तो अपने प्रयास से वो नहीं निकल पाता है। अगर कोई बाजू में नौका है तो नौका पर वो सहारा ले सकता है। तो संसार भवाटवी में अगर कोई फंस जाता है तो भगवान के चरण कमलों के नौका का आश्रय लेकर वो पार हो सकता है, नहीं तो इसमें कोई सुखी नहीं हो सकता है। इस भवाटवी में, इस भव संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता है। निर्मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे। अगर जहाज में कोई पंछी है वो अगर उड़ करके अन्यत्र सुखी होना चाहेगा तो असंभव है। पक्षी को भी विश्राम करने के लिए वृक्ष चाहिए, स्थल चाहिए या पानी में नौका चाहिए। तो ये शरीर में आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों को सुखी अगर करना है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस भावाटवी में तभी हम पार हो सकते हैं, नहीं तो पार नहीं हो सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझता है कि मेरा परम उद्देश्य है यहां से पार होना, यहां से जाना, यहां रहना नहीं, यहां से जल्दी जाना है, जो यह जान जाता है कि हमें यहां रहना नहीं है, यहां से निकलना है, ये सागर से हमें पार होना है, तो प्रयास करता है। लेकिन जो सोचते हैं कि नहीं, हमें यही रहना है, हमारा ही वास्तविक यही निवास है, तो कृत्रिम आवश्यकताओं में वो उलझ जाता है और एक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकताएं आ जाती हैं। आवश्यकताएं समुद्र की लहरों के समान है, एक आवश्यकता आती है फिर दूसरी आती है, उसी की पूर्ति करने में हमारा पूरा समय बीत जाता है। व्यक्ति जीवन भर कमाकर घर बनाता है, आदमी इतना परिश्रम करता है घर बनाने के लिए, बंबई में लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, होम लोन, फिर भी कम पड़ जाता है। लोग जीवन भर कमाते हैं, रिटायर होने के बाद भी घर नहीं ले पाते हैं, और घर लेने के बाद भी घर में अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है। इसके बाद घर का देखभाल करने की जरूरत पड़ती है, घर में पानी है, बिजली है, आपको टेलीफोन है, बहुत सारी कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करने में व्यक्ति का पूरा समय जो है धन कमाने में, धन उपार्जन करने में बीत जाता है। इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान घर खोजता है, घर बनाता है, घर बना लेने के बाद शरीर रक्षा के लिए जल और धन प्राप्त करने का प्रयास करता है और नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण सब कुछ भूल जाता है। भी घर बनाता है और घर में म्युनिसिपल का कनेक्शन चाहिए, सप्लाई वाटर चाहिए, इसके बाद घर को संभालने वाली एक गृहिणी चाहिए, स्त्री चाहिए। आदमी जब घर बना लेता है तब विवाह करता है। किसी से पूछेगी आपका विवाह हो गया? तो नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ है, पहले घर घर ले लूं तब विवाह कर और घर नहीं होगा तो कहां रखेगा वो स्त्री को। घर वास्तविक घर जो है स्त्री है। शास्त्र में कहा कि गृहिणी गृहमुच्यते, स्त्री को ही घर कहा गया है। गृहिणी गृहमुच्यते, घर है लेकिन घर में स्त्री नहीं है तो घर का न कोई सफाई करेगा न कोई देखभाल करेगा, घर को स्त्री ही देखभाल करती है। घर का जो कार्य है स्त्रियां अच्छी तरह से करती हैं, पुरुष बाहर का काम करते हैं। तो बिन, लोग कहते हैं बिन घरनी घर भूत के डेरा बिन घरनी घर भूत के डेरा, अगर घर है खूब अच्छा स्त्री नहीं है तो भूत का समझिए वास स्थान है। तो घर बनाकर व्यक्ति स्त्री लाता है, फिर स्त्री होने का फिर संतान होते हैं, संतान होने के बाद संतान को पढ़ाना लिखाना, उसको सही रास्ते पर लाना, उसको भी ऐसी विद्या सिखाना जो वो भी धन कमा सके। पुत्र को भी ऐसा विद्या सिखाता है कि अधिक से अधिक धन कमा सके। आज शिक्षा का उद्देश्य क्या है? धन कमाना। पहले शिक्षा का उद्देश्य होता था मोरालिटी, व्यक्ति एक मोरल बने, एक नैतिक हो, उसके जीवन में नैतिकता हो। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य है केवल पैसा कमाना। आपका आचरण, आपका नीति, आपका विचार कुछ भी हो, उद्देश्य है केवल पैसा कमाना। पहले शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता था। पहले लोग बहुत बड़े विद्वान होकर के पैसा का कोई रोजगार नहीं करते थे, निःशुल्क जो है ज्ञान देते थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है और उस ज्ञान को फिर दूसरे को देता है, कंजूस नहीं होता है। जो ज्ञान को दूसरे को नहीं देते हैं वो कंजूस होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है किसी भी क्षेत्र में तो वो निःशुल्क ज्ञान नहीं देता है, वो विज्ञापन में लिखता है इतना फीस है, इतना घंटे का इतना फीस है, इतने दिन का इतना पैसा है, इतने महीने का इतना है। नहीं, पहले जो विद्वान होते थे वो निःशुल्क ज्ञान देते थे। जैसे वृक्ष में फल आता है तो वृक्ष अपने फल को निःशुल्क दे देता है, उसी तरह विद्वान लोग अपने पास उनके पास जो भी ज्ञान होता है निःशुल्क दे देते हैं। वो विद्या से झुक जाते हैं, जैसे वृक्ष फल से झुक जाता है उसी तरह विद्वान अपने ज्ञान से झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति विद्वज्जना, विद्वान लोग नम्र हो जाते हैं और झुक जाते हैं। जैसे वृक्ष झुक जाता है तो आसानी से लोग फल को तोड़ लेते हैं। कोई वृक्ष बहुत ऊंचा है, फल है, तो उसको तोड़ना जो है आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जब फल आता है तो बिल्कुल नीचे से झुक जाते हैं, आसानी से आप फल तोड़ सकते हैं। तब विद्वान लोग आम जन समुदाय के लिए इतने नीचे स्तर पर आ जाते हैं कि उनका उपयोग कोई भी करता है। तो यहां पर इस श्लोक में कहा गया कि हमें अति संग्रह नहीं करना चाहिए, शरीर के सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चाणक पंडित कहते हैं कि वृथा आयु व्ययः पर, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना जो बहुमूल्य समय उसका व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए कि हम भवाटवी से कैसे पार हो जाएं। नहीं तो भवाटवी में हम बने रहेंगे तो इसमें कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भावटी में अनेक भयंकर जीव हैं, अनेक प्रकार के बीमारी है, उसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ये प्रहलाद महाराज भी असुर बालकों को शिक्षा देने में कह रहे हैं कि हे असुर बालकों, अपने समय का बहुमूल्य जो क्षण है उसको व्यर्थ नष्ट मत करो, उसको भगवत प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करो। एक क्षण भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य पंडित कहते हैं एक क्षण भी जो बीत जाता है उसको करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर वापस नहीं लिया जा सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम आंद्रिकम दैत्या देह जोगे न देही नाम, सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अजत नत। इस भवाटी में हम लोग सुख दुख से प्रभावित होते हैं, या दुख का प्रतिकार करने के लिए हम सुख के लिए प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति के पास कोई दुख आता है तो उसका प्रतिकार करना चाहता है और सुख के लिए प्रयास करता है। जैसे ठंडी आती है तो लोग गर्मी में रहना पसंद करते हैं, ठंडी का प्रतिकार करना चाहते हैं। अब गर्मी आती है तो ठंडी स्वीकार करते हैं, ठंडी स्वीकार करना चाहते हैं। वास्तव में दोनों स्थिति में परेशानी है। ठंडी है तो ठंडी में परेशानी है, गर्मी है तो गर्मी परेशानी है, वर्षा ज्यादा है तो भी परेशानी है, अति अनावृष्टि है तो भी परेशानी है। यहां हर परिस्थिति में केवल परेशानी है। जब गर्मी होती है तो लोग एसी चलाते हैं, जब ठंडी आती है तो लोग हीटर चलाते हैं। हर भौतिक परिस्थिति जो है जीव को व्यथित करती है, लेकिन जो धीर लोग हैं, जो ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वो उसको सहन करते हैं। वो एसी भी नहीं लगाते हैं, हीटर भी नहीं, उसको सहन करते हैं। वो फैन भी नहीं चलाते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, बहुत सारे आश्रम वहां ना फैन है ना एसी है ना कूलर है, उसको सहन करते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज ना फैन चलाते हैं ना एसी चलाते हैं। मैं एक भक्त से पूछा कि महाराज यहां फैन नहीं चलाते हैं, दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है तो वहां उपयोग करते, वहां भी नहीं करते। दिल्ली में जब मई जून में आप जाएंगे तो बहुत गर्मी पड़ती है। दिल्ली में हम रहे हैं मई जून में, इतनी गर्मी पड़ती है कि एसी भी काम नहीं करता है। अब बाहर निकलने में ऐसा लगता है आदमी झुलस जाएगा, लेकिन महाराज फिर भी एसी नहीं चलाते हैं। उसको सहन करना है, और सहन करेंगे तो उसे निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन व्यक्ति कृत्रिम आवश्यकताओं से, कृत्रिम आवश्यकताओं से उस दुख को नलिफाई करना चाहता है, उसका प्रतिकार करना चाहता है। वो गर्मी को कूलर से एसी से प्रतिकार करना चाहता है, और गर्मी आती है ठंडी आती है तो स्वेटर पहनकर जैकेट पहन करके रजाई ओढ़ करके कंबल ओढ़ करके लोग उसका प्रतिकार करना चाहते हैं। ये वास्तविक प्रतिकार नहीं है। वास्तविक प्रतिकार क्या है कि यह समझना कि भौतिक संसार को हम अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं। हमारे अनुसार भौतिक संसार नहीं चलता है। भौतिक जगत का जो व्यापार है अपने आप चलते रहता है। संस्कृति इति संसारम, वो चलता है, हम उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं। अगर हाँ हमें शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो हमें यहां से जाना चाहिए। अब इसको आप कितना भी अनुकूल बनाएंगे अनुकूल नहीं होने वाला है। जैसे देह है, देह को कितना भी आप प्रयास कर लेंगे इसको वृद्धावस्था से नहीं रोक सकते हैं। आप कितना भी घी खाइए, मलाई खाइए, मालपुआ खाइए, पिस्ता खाइए, लेकिन बुढ़ापा आपको छोड़ने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं हम बुढ़ापा को आने नहीं देंगे तो बहुत प्रयास करते हैं। आप कितना भी बाल को काला करिए, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए, कितना भी दांत निकाल कर नया दांत लगा लीजिए। बहुत लोग दांत को एकदम ऐसा बना देते हैं लगता नहीं है कि इनका आर्टिफिशियल दांत है। कृत्रिम जो वस्तुएं हैं वो कृत्रिम ही होती, उसको यथार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं। शरीर की आवश्यकताओं को कितना भी आप बेटर कर दीजिए लेकिन फिर भी हमें वही प्राप्त होगा जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए प्रकृति अपने तीन गुणों के द्वारा कार्य करती है और तीन गुणों से हम प्रभावित होते हैं, हम तीन गुणों में हैं। इसलिए भगवान गीता में कहा कि प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर हो, हमें प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर होना है, मतलब विशुद्ध सत्व गुण में जाने का प्रयास है। त्रैगुण भवार्जुन, भगवान तीन गुणों से कैसे ऊपर हो सकते हो? प्रकृति के सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण से भी ऊपर जाना है तो कैसे कोई जा सकता है? जब इसको समझेगा, इसको सहन करेगा और सहन करेगा तब इसको इसके लिए जाने का प्रयास करेगा। तब प्रकृति के तीन गुणों से जब कोई ऊपर होता है तब भगवान को वो पकड़ सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जब तक तीन गुणों में रहेगा तब तक नहीं पकड़ेगा। इसलिए हमको निर्गुण स्टेज में, भक्त लोग निर्गुण में रहते हैं, कोई गुण नहीं होता है कोई गुण मतलब ऐसा नहीं कि गुण बीन है, नहीं, यहाँ निर्गुण का अर्थ है कि रजो तमो गुण से ऊपर हो जाते हैं। निर्गुण का मतलब यह नहीं कि सब उनमें अवगुण आ जाते हैं, नहीं, भक्त में सब सद्गुण रहते हैं लेकिन ये प्रकृति के जो तीन गुण है इससे ऊपर हो जाते हैं। सर्वई गुण तत्र समा सत्य सुरा, भक्त में सब दिव्य गुण आ जाते हैं लेकिन फिर भी वो निर्गुण होते हैं। निर्गुण मतलब तीन गुण नहीं होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता है। सत्वगुण क्यों नहीं होता है? सत्वगुण होता है लेकिन बिल्कुल उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं होता है। सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्वगुण होता है। लोग बोलते हैं बहुत सात्विक हैं, अब मान लिया बहुत सत्वगुणी हैं, हो सकते हैं बहुत सत्वगुणी लेकिन उसमें रजोगुण और तमोगुण रहता है। थोड़ा भी रजोगुण और तमोगुण रहेगा तो विशुद्ध सत्वगुण उसमें नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति हलवा बनाता है शुद्ध घी में हलवा बना करके तैयार करता है और थोड़ा सा किरासन तेल डाल देता है थोड़ा सा किरासन तेल डाल देने से उसका स्वाद जो है बिगड़ जाता है। बिल्कुल देसी घी में आप बनाए हैं लेकिन थोड़ा सा किरासन तेल उसके स्वाद को खराब कर देता है। उसी तरह हम सत्वगुण में रहते हैं लेकिन थोड़ा भी रजोगुण और तमोगुण उसमें आता है तो उसके स्वभाव को नष्ट कर देता है। लेकिन जीव लोभ के कारण मन में यह धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए, भौतिक प्रकृति का वो भोग करना चाहता है। जो भौतिक ईश्वर जो है सोचता है हमारे लिए है, उसका भोग करने का प्रयास करता है। जैसे दीपक पर रात्रि में पतिंगा जो है उड़कर जाता है उसको भोग करने के लिए, उसके सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के रात्रि में कीड़े उसके ऊपर जाते हैं आलिंगन करने के लिए। जैसे आलिंगन करता है वो जल जाता है। तो भौतिक जगत जो है वास्तव में देखने में अच्छा है लेकिन हमें वो जला देता है, नष्ट कर देता है। भौतिक सुख जो है हमारा सर्वनाश कर देता है। भौतिक सुख को कैसे कहा गया है? जैसे तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमनी समाजे, तप्त बालू में एक बिंदु पानी से क्या होगा? अगर आपको प्यास लगी हो, रेगिस्तान में आप जा रहे हैं, खूब जोर से प्यास लगी है और एक बिंदु पानी में क्या होगा? एक बिंदु पानी से आप होठ को भी शीतल नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक संसार जो है तप्त बालू में प्रदेश जैसा है और यहाँ का सुख जो है एक बिंदु जैसा है। व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है, हमेशा अतृप्त रहता है, प्रयास करता है, भागता है अपने को तृप्त करने के लिए, भागता है अथक प्रयास करता है, फिर भी वह अतृप्त रहता है। जैसे मरुभूमि प्रदेश में मृग जो है जल के पीछे भागता है, अब जल प्राप्त करेगा, मृग मारीचिका में वो जल के पीछे दौड़ता है लेकिन जल नहीं प्राप्त होता है, जल के मोह में वो अपना प्राण छोड़ देता है, जल है नहीं, ऐसा दिखाई पड़ता है कि अब आगे जल है लेकिन जल नहीं होता है, जल का केवल प्रतीत है लेकिन जल नहीं है वास्तव में। इस भौतिक संसार में हम सुख के लिए प्रतीत करते हैं कि अब सुख होने वाला है लेकिन सुख नहीं हो पाता है, दिखाई देता है कि अब हम सुखी हो जाएंगे, अब थोड़ा और परिश्रम करेंगे तो केवल सुख ही प्राप्त करना है। किसान लोग सोचते हैं कि अभी खेती कर देंगे इसके बाद फिर आराम करना है, खेती करने का तब तक उनको घास निकालना, खेती का कुड़ाई करना, फिर जब वो होता है तो फिर उसमें बीज खाद डालना, फिर कटाई करना, फिर उसको थ्रेसिंग करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर तब तक फिर सीजन आना, फिर जुताई करना, एक के बाद एक लगा रहता है। गांव में किसान लोग कहते हैं कि बस अब धान की रोपनी करने के बाद आराम ही तो करना है, थोड़ा और परिश्रम करिए रोपाई करने का फिर आराम करना, लेकिन रोपनी के बाद फिर खेत में सोहनी करना होता है। सोहनी आप लोग जानते हैं, जो खेत में अन्य घास आ जाते हैं उसको निकालना पड़ता है, धान के अलावा और भी जो पौधा आ जाते हैं उसको सोहना निकालना, फिर वो निकालने के बाद फिर धान में खाद देना, खाद देने के बाद फिर धान में अनेक कीटाणु लग जाते हैं उस पर छिड़काव करना, फिर धान जब तैयार हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, काटने का फिर उसको दावना पड़ता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है, फिर साफ करके फिर घर में स्टोर करना पड़ता है, बीच बीच में उसको देखना भी पड़ता है कि चूहे कीड़े न खा जाएं, तो एक के बाद एक काम लगा रहता है। गृह कार्य नाना जंजाला, इस संसार में अनेक समस्याएं आती हैं, एक के बाद ऐसा आता है। आदमी सोचता है कि आज मैं दाढ़ी बना लिया तो अब फिर नहीं बनाना पड़े, दूसरे दिन फिर दाढ़ी बनाना पड़े, आज हम स्नो लगा लिए तो कल नहीं ले, फिर रोज आपको वही करना है, पुनः पुनः चर्बीचर बनाना, बार बार वही करना है। आप खाए कुछ समय फिर भूख लग जाती है। ये भौतिक संसार जो है इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, स्टेबल नहीं कर सकते हैं, ये चलो एक बार कर दिया फिर दोबारा नहीं करना है, नहीं, एक बार स्नान कर लिया नहीं, फिर पसीना होता है, शरीर में दुर्गंध आता है, इसको इसका स्वरूप ही ऐसा बनाया गया है। आप कितना भी नहा लीजिए, दो दिन नहीं नहाइएगा तो पूरा शरीर में जो है ये हो जाता है, आप कितना भी खूब अच्छा खा लीजिए फिर भूख लगती है। इस संसार को भगवान ने ऐसा बनाया है लेकिन हम अपने प्रयास से इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, कितना भी अच्छा बनाइए कुछ समय के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। खूब घर को पेंटिंग कर दीजिए, अच्छा से सजा दीजिए, कुछ समय के बाद फिर उसको दोबारा करना पड़ता है। तो ऐसे संसार में से हमें जाना चाहिए, कैसे कहां जाना चाहिए, जहां शाश्वत जगत है, शाश्वत जगत में जाने के बाद वहां सब समस्याएं नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, न तद्भासेते सूर्यो, न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हमारा घर जहां है वहां जाना चाहिए, यह हमारा वास्तविक घर नहीं है, लेकिन इस टेम्पोररी घर में हम इतना आसक्त हैं, आसक्ति हो जाती है बड़े बड़े विद्वानों को भी, विद्वांसो अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान भी को भी माया खींच लेती है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी आसक्त हो जाते हैं, आसक्त का 100% लोग आसक्त हैं, देह में गेह में परिवार में सुताप्त बीत संसार में संसार के स्त्री में पुत्र में घर में संबंधी में लोग आ सकते हैं। गृह द्वारा सुता बीत धन में पुत्र में घर में, इसलिए घर जो विरक्त महात्मा लोग होते हैं वो घर नहीं बनाते हैं। घर बनाने में घर में आसक्ति हो जाती है। अच्छा घर आप बना दीजिए तो आदमी सोचता है कि यही वृंदावन मथुरा द्वारका यही है यही रहना सबसे बड़ा ये है। और ससुराल हो जाता है तो लोग सोचते हैं कहाँ जा रहे हैं, जनकपुर हमारे यहाँ लोग बिहार में बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए थे, तो दूसरा आदमी व्यंग में बोलता है जनकपुर गए थे, माने ससुराल गए थे। ससुराल आजकल लोगों को ज्यादा क्या प्रिय है, ससुराल ज्यादा लोगों को प्रिय है और ससुर साले साली ये सब प्रिय है, साधु भाई हमारे यहाँ लोग बिहार में कहते हैं आठ कमानी छाता और सरुआना नाता। सरुआना नाता जो है बहुत जोर से चलता है इस समय। भाई भाई में प्रेम नहीं होगा, अपने चाचा कजिन में प्रेम नहीं होगा, लेकिन साधु भाई में बहुत प्रेम होता है लोग और नाता रिश्ता भूल जाते हैं, लेकिन सरुआना नाता नहीं लोग भूलते हैं, लोग बोलते हैं। इसलिए विरक्त महात्मा लोग घर नहीं बनाते हैं। घर बनाएंगे तो घर के अनेक आवश्यकताओं में उलझ जाएंगे, इसलिए लोमस ऋषि घर नहीं बनाते हैं। लोमस ऋषि के बाद एक बार नारद ऋषि गए। लोमस ऋषि का एक बाल जब सफेद होता है तो ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, लेकिन फिर भी लोमस ऋषि घर नहीं बनाते हैं। तो नारद जी पूछे आप घर क्यों नहीं बनाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात में क्यों ऐसे रहते हैं। बोले हम क्या घर बनाएंगे, इतनी कम आयु है, घर बनाएंगे उसमें क्यों दस समय गंवाएंगे। तो नारद जी ऋषि बोले कि आपकी इतनी लंबी आयु है, कम कहाँ है, ब्रह्मा से कई गुना ज्यादा लंबी आपको घर बनाना चाहिए। तो नहीं नहीं घर नहीं बनाए, जैसे शिव जी घर नहीं बनाते हैं ऐसे भजन करते हैं, कोई संग्रह नहीं करते हैं, कोई संग्रह नहीं है, फटक चंद गिरधारी न लोटा न थाली, लोटा थाली भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं करपात्री। एक बार राधा गुण महाराज बता रहे थे कि ब्रज में एक महात्मा थे, उनके पास कुछ नहीं था, मधुकरी करके हाथ पर ही खा लेते थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी कौपिन भी नहीं धारण करते थे। और जब कभी गृहस्थों के घर में जाते थे तो गोदोहन मत, गाय दुहने के में जितना समय लगता उतना समय रहते थे, और हाथ में जितना दूध आता उतना ही पीते थे। करपात्री, करपात्र है जिनका, अंजलि में जितना आता है उतना में ही वो लोग खा लेते हैं। और कोई बेड और रूम नहीं बनाते हैं कि जमीन है, जमीन पर सो जाते हैं, कोई पिलो नहीं लेते हैं, हाथ में ही सो जाते हैं, कोई वस्त्र नहीं रखते हैं क्योंकि पेड़ का छाल पहन लेते हैं। बलकल भूमि शयन बलकल बसना, भूमि पर सो जाते हैं और बलकल धारण कर लेते हैं। बलकल मतलब वृक्षों के पत्ते को छाल को पहन लेते हैं, और जो पेड़ से फल गिर जाता है उसको खा लेते हैं, या खेती में जो अनाज गिर जाता है उसको चुनकर खाते हैं। क्यों संग्रह नहीं करते हैं कि संग्रह कर लेने पर उसमें आसक्ति हो जाती है, उसको संभालने में सारा समय चला जाता है। घर में जो लोग रहते हैं घर के सामान को देखने में सजाने में उसको ठीक ठाक करने में पूरा दिन चला जाता है। घर में इतना सामान है, इतना काम है कि आप भी खटते हैं, नौकर भी खटता है, फिर भी काम नहीं थकता है। इतना काम होता है घर में, कि घर के काम में दिन रात चला जाता है, इसलिए अति संग्रह न कर्तव्य। एक संस्कृत में नीति शास्त्र में कहानी था कि अति संग्रह न कर्तव्य, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? कि संग्रह करेंगे आदि उसी संग्रहालय के हो जाएंगे। जैसे संग्रहालय में बहुत वस्तुएं होती हैं शो के लिए, केवल शो के लिए होता है संग्रहालय, उपयोग करने के लिए नहीं। तो व्यक्ति संग्रहालय में वो भी संग्रह हो जाता है, केवल शो बनकर रह जाता है, उसका उपयोग भी नहीं कर पाता है। जैसे मधुमक्खी जो है संग्रह करता है, मधुमक्खी मधु का संग्रह करता है, और एक दिन मधु छुड़ाने वाला आता है, आग लगा करके मधुमक्खियों को भगा देता है और शहद को ले जाता है। जंगल में मधु छुड़ाने वाले जो होते हैं वो जंगल में आग लगा देते हैं, और आग जब ऊपर जाता है तो जो भी मधुमक्खी है सब ताप से भाग जाते हैं और मधु लेकर चला जाता है। तो संग्रह करने वाला व्यक्ति का सारा धन जो है मधु छुड़ाने वाला ले जाता है और ऐसा आग लगाता है कि मधुमक्खियों का पंख भी जल जाता है। तो नीति शास्त्र में कहानी था कि एक श्रृंगाल जो है एक बार जंगल में घूम रहा था भोजन के लिए, श्रृंगाल सियार, तो देखा कि एक शिकारी जो है शिकार करने के लिए बैठा है। एक हरिण जो है और एक सुअर जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे। कभी कभी जंगल में सुअर हरिण या अन्य जानवरों का युद्ध होता है, तो एक सुकर और एक हरिण जो है आपस में लड़ रहे थे और एक शिकारी जो है बाण लेकर उन पर आघात करने वाला था। तो जैसे ही शिकारी आघात किया तो हरिण जो है हरिण और सुअर जब युद्ध कर रहे थे तो सुअर ने हरिण को मार दिया। सुअर जंगल का जो सुअर होता है बहुत मजबूत होता है, उसका दांत भी होता है और वो जमीन में भी गड्ढा खोद देता है। जंगली सुअर बहुत खतरनाक होता है। तो जंगल का सुअर हरिण को मार देता है, इसके बाद शिकारी जो है सुअर को मार देता है, दोनों मर जाते हैं। लेकिन जो सुअर था मरते मरते शिकारी को मार देता है। अधमरा अवस्था में देखता है शिकारी को सामने, तो उसको मार देता है। हरिण भी मर जाता है और सुकर भी मर जाता है और शिकारी भी मर जाता, तीनों मर जाते हैं। तो जो सियार था श्रृंगाल, वो देखा कि तीन जंतु हमारे सामने खाने के लिए हैं, तो प्लानिंग किया, पूरा अकाउंटेंट बुलाकर अकाउंट्स किया कि कितना दिन का ये हमारे लिए भोजन है पूरा अपने रजिस्टर में अकाउंट्स बनाया कि कितना दिन हम खा सकते हैं आराम से देखा कि सुअर है बहुत मांस है, हरिण है, तो बोला 3 महीने तक तो हरिण को खाऊंगा, 2-3 महीने सुअर को खाऊंगा, 1 महीने तक इस आदमी को खाऊंगा, ऐसा प्लानिंग किया। इतने समय के लिए हमारे पास स्टॉक जो है आ गया, तो और परिश्रम करने कोई जरूरत नहीं है, इतना महीने तक हम आराम से खा सकते हैं। तो बोला आज जो है जो धनुष के रस्सी में जो खून मांस लगा है इसी को आज खाते हैं, जो धनुष था ना उसमें भी लहू लुहान शिकारी को जब सुअर ने मारा तो धनुष के डोरी में अनेक खून के धब्बे और मांस के टुकड़े फंस गए थे। तो श्रृंगाल ने कहा कि आज मैं धनुष के डोरी में जो मांस है इसको खाता हूं। जैसे ही धनुष के डोरी को प्रत्यंचा को खाने लगा तो खाते खाते उस रस्सी को जैसे ही काटा वो धनुष में इतना ये हुआ, आवेग हुआ, उसके गले में लगा और मर गया वहीं। धनुष का जो रस्सी होता है उसको काटेंगे तो बहुत जोर से होता है, उछाल होता है, क्योंकि रस्सी उसको बांधता है दोनों तरफ से खींच करके, ऐसे धनुष को रस्सी ऐसे झुकाता है, दोनों तरफ से झुक जाता है, रस्सी काटेंगे तो बहुत जोर से उसमें ये होता है। तो जैसे रस्सी को काटा श्रृंगाल, उसके गले में धनुष का जो लकड़ी था जोर से लगा और वो भी मर गया। तो उसको खाने के लिए बहुत कुछ था, हरिण को खा सकता था, सुअर को खा सकता था, लेकिन वो अपने प्लानिंग में फेल हो गया। व्यक्ति प्लानिंग करता है कि ये करना है ये करना है, पहले ये कर लेता हूं। अरे खाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन वो संग्रह करना चाहता था कि नहीं इसको अच्छा है रखो। जो कंजूस लोग होते हैं वो अच्छा अच्छा चीज संग्रह करते हैं। अच्छा सब्जी होगा तो बोलेंगे मार्केट में बेच दो पैसा आएगा, बैगन है जो सड़ा हुआ होगा तो बोले सड़ा हुआ बैगन अलग कर दो, इसको कटिंग करके घर में लोग खा जाएंगे। जो अच्छा अच्छा चीज है मार्केट में भेजो पैसे के लिए। गांव में लोग जो अच्छा चावल होता है, किसान जो कंजूस लोग होते हैं वो अच्छा चावल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और जो खराब चावल होता है बोलेंगे ये हम लोग खा लेंगे। एक्सपोर्ट में क्या अच्छा क्वालिटी लोग भेजते हैं पैसा के लिए, क्यों? संग्रह करने के लिए, ज्यादा संग्रह हो जाए। और संग्रह करके भी क्या करना है, एक दिन वो श्रृंगाल की तरह मर जाना है। तो भौतिक वस्तुओं का वास्तविक उपभोग भी नहीं कर पाते हैं, उसका उपयोग भगवान की सेवा में भी नहीं लगा पाते हैं, और व्यर्थ के संचय में अपना समय गंवा देते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्यों तुम इतना जत्न करते हो, सुख होने के लिए क्यों जत्न करते हो? सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह जोगेन देह नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अजत्नतः। दुख और सुख इस भौतिक संसार में दिवा रात्रि की तरह है, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होती है, सुख दुख दोनों आना ही है। केवल आप सुखी नहीं रह सकते हैं, केवल आप रो भी नहीं सकते हैं, केवल हंस भी नहीं सकते हैं, या दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक संग नहीं हो ही बुआलू हसल ठठाई फुलाई बगालू, एक साथ हंसना और रोना नहीं हो सकता है। एक साथ आप सोचेंगे हंस भी लूं और रो भी लूं तो नहीं हो सकता, दोनों बारी बारी से आता है। दिन और रात दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, एक साथ हो सकता नहीं हो सकता है। आप इस समय मान लीजिए हंस रहे हैं तो इसके बाद आप रो भी सकते हैं, रोने वाला ही गाता है, रोने वाला ही गाता है, और जो गाता है कभी कभी हम लोग दूसरे पर व्यंग करते हैं या दूसरे पर हंसते हैं तो हमारी बारी आ जाती है फिर रोने की। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा सुखी रहेंगे और वो हमेशा दुखी रहेगा, नहीं। हम आज सुखी हैं तो कल दुखी हो सकते हैं, या वो अभी दुखी है तो कल उसका नंबर सुखी में आने वाला है। जो दुखी है वो भविष्य में सुखी हो सकता है, और जो अभी सुखी है वो दुखी हो सकता है। दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। इसलिए संसार के सुख दुख में या संसार के वस्तुओं में आसक्ति को निकालना है। भगवान यही कहे अर्जुन को कि तुम इसमें आसक्त मत हो, इसको अनपेक्ष भाव से, अनासक्त भाव से इसमें रहो। अगर इसमें हम आसक्त हो जाएंगे तो वस्तुएं हमें छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है हमारी नहीं जाती है, वस्तुएं चली जाती हैं। जैसे कोई विवाह किया स्त्री डाइवोर्स होता है चली जाती है, लेकिन स्त्री की आसक्ति नहीं जाती है। लेकिन जो अनासक्त होकर रहता है कि स्त्री भी भगवान की सृष्टि में है, ये कभी भी जा सकती है, या भगवान की सेवा के लिए है तो आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जो लोग सोचते हैं हमारी सेवा के लिए है तो वो आसक्ति जो है मरते दम तक बनी रहती है, और वही आसक्ति से फिर दूसरा शरीर मिलता है। इस प्रकार वह फंस कर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है। लेकिन यह सोचता है कि नहीं, जो भी वस्तुएं हैं भगवान की सेवा के लिए है, हमारी नहीं है, सबे भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान की है। लेकिन जब हम अपना मान लेते हैं और अपने लिए मान लेते हैं और अपने सुख सुविधा के लिए बना लेते हैं, तो वही आसक्ति फिर दूसरा देह लेने के लिए बाध्य कर देती है, भिन्न भिन्न देहियों में दुख भोगता है। जैसे मछली जो है जाल में फंस जाती है, मछली मारने वाले क्या करते हैं, जाल डालते हैं, और मछलियां जल में फंस जाती हैं, लेकिन जल जो है चला जाता है। जल में मछली भी होती है, जल भी होता है, लेकिन जल से जल चला जाता है लेकिन मछली जल में फंस जाती है, लेकिन जल के प्रति जो आसक्ति है मछली की वह नहीं जाती है। जल के प्रति मछली की ऐसी आसक्ति है कि बिना जल के मछली नहीं रह सकती है। सुखी मीन जे निर्यगाधा जिन्हें हरि शरण ने एक को बाधा, जो भगवान के शरण में शरणागत हो जाता है, षट विधा शरणागति, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना, षट विधा शरणागति, शरणागति के छह प्रकार हैं। भगवान के का शरणागत हो जाना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कैसे है वो पहला लाइन, षट विधा शरणागति, मतलब कि भगवान के जो शरणागत हो जाते हैं वही मछली सुखी है जो अगाध नीर में है, लेकिन कभी कभी वो भी जाल में फंस जाती है। कभी कभी उद्भट विद्वान बहुत बड़े भक्त भी जाल में फंस जाते हैं, तो बहुत बड़े चतुर भक्त भी जाल में फंस जाते हैं, कभी बहुत अच्छे अच्छे कथाकार भी जाल में फंस जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं फंसते हैं, कभी कभी बड़ी मछलियां भी जाल में फंस जाती हैं, निकल नहीं पाते, लेकिन छोटी मछलियां निकल जाती हैं। जो छोटी मछली है वो जाल से निकल जाती है, लेकिन जो बड़ी मछली है वो जाल से नहीं निकल पाती है। कभी कभी छोटे भक्त भी आसानी से पार हो जाते हैं और बड़े बड़े भक्त फंस जाते हैं, तो छोटी मछलियां पार हो जाती हैं लेकिन बड़ी मछलियां फंस जाती हैं और जल के अभाव में तड़प तड़प करके जाल में मर जाती हैं। तो रहीम कभी एक बहुत बड़े भक्त हुए, वो लिखते हैं कि जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल पड़े जल, जाल में मछली को जल छोड़ देता है, जल को नहीं छोड़ना चाहिए वास्तव में। जल कितना निष्ठुर हो जाता है, जो मछली जल से इतना प्रेम करती है लेकिन जल उसके प्रेम को ठुकरा देता है और मछली को छोड़कर भाग जाता है जल। जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, मछली के मोह को छोड़कर जल भाग जाता है, लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन रहीम कभी कहते मछली का जो जल के प्रति आसक्ति है वह नहीं जाता है, भले जल छोड़ देता है। कभी कभी व्यक्ति के बड़े नजदीकी जो संबंधी वो भी लात मार देते हैं, या उसका धन भी चला जाता है, धन भी साथ छोड़ देता है, स्वास्थ्य भी छोड़ देता है, रूप जवन भी साथ छोड़ देता है, हमारा सब कुछ साथ छोड़ देता है, फिर भी उनके प्रति जो हमारा आसक्ति है नहीं जाती है। बाल भी सफेद हो जाता है, दांत भी हो जाता है, घर की स्त्री भी मार करके निकाल देती है, लेकिन फिर भी आसक्ति उसके प्रति ममता नहीं जाती है। कभी कभी आदमी वृद्ध हो जाता है तो स्त्री ही उसको निकाल देती है, नारी निकालत घर से, ममता तू न गई मेरे मन से, फिर भी ममता नहीं जाती है। वही बात यहां कहा गया है कि जीवात्मा अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए, और इस प्रकार वह फंस कर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है, आसक्ति हो जाती है। दसन टूट गए वचन नहीं आवत, दांत भी टूट जाता है वचन भी नहीं आता है, दसन टूट गए। शंकराचार्य लिखते हैं कि बाल सफेद होता है केशम पलितम, है ना, केश अंगम गलितम, अंग भी गल जाता है, केश जो है बिल्कुल सफेद हो जाता है, सारे अंग जो है गलित गल जाते हैं, एकदम शिथिल हो जाते हैं, लेकिन आशा पासा नहीं जाती है, स्पृहा रहती है कि ये हमारे हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, इनसे हम सुखी होंगे, वो मन में जो आसक्ति है वो नहीं जाती है, संसार के भोगने की आसक्ति। तो दसम टूट गए बचन नया उत नाद निकालत घर से, ममता तुन गई मेरे मन से, ममता नहीं जाती है। अगर कोई भगवान के भरोसे हो जाए, हम लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, वास्तव में भगवान ही इस दुख को तोड़ सकते हैं, इस संसार के दुख को भगवान ही खत्म कर सकते हैं, और भगवान जब कृपा करते हैं तब हमें वास्तविक सुख प्राप्त होता है, तब भव रोग को हम पार हो सकते हैं। 84 लाख जुनियों में हम दुखी हैं, अनादिकाल से दुखी हैं, लेकिन भगवान के को शरण को एक मन से स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ही हमें इस दुख से निवृत्ति दिला सकते हैं, और भगवान के शरण में जाना ही हमारा दुख का निवृत्ति का सबसे उपाय है, तब वो सुखी हो सकता है। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं और बगान में भी पेड़ होते हैं, जंगल में जो पेड़ होता है वो पत्थर पर भी हरा भरा रहता है, उसको पानी कोई नहीं डालता है, और गार्डन में जो पेड़ होता है डेली पानी डाला जाता है। एक कवि ने लिखा है कि चमन में फूल खिलते हैं, वन में हंसते हैं। चमन में फूल खिलता है मगर वन में हंसते हैं। जो बगान में फूल होता है माली उसको काटते रहता है, इधर उधर शाखा जाते उसको काटते रहता है, वो स्वतंत्र नहीं है। अब हमारे गार्डन में भी जो फूल है पत्ती उसको हमेशा काट करके एक लाइन में रखा जाता है, उनको हमेशा काटा जाता है, तराशा जाता है, वो कहाँ सुखी है। लेकिन जंगल में जो वो सुखी है, हंसते हैं, उनको कोई काटता नहीं है जल्दी। तो चमन में फूल खिलते हैं लेकिन वन में जो फूल है वही हंसते हैं, और वन में फूल और पेड़ जो है पत्थर पर भी हरे भरे रहते हैं मई जून के महीने में भी, और सूखता नहीं है, क्यों? भगवान के भरोसे हैं। जो रहे भगवान भरोसे पत्थर पर हरियाए, तुलसी बिरवा बाग में सीचत के कुमिलाए, जो रहे राम भरोसे पत्थर पर हरियाए। आप कितना पानी डालते हैं फिर भी वो मर जाता है, लेकिन जंगल में कौन पानी डालता है? पहाड़ पत्थर पर भी पेड़ है और फिर भी हरा भरा रहता है। इसका कहने का अभिप्राय है कि हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का अगर आश्रय हम नहीं लेंगे तो भौतिक संसार तो ऐसे ही हमें जैसे मछलियों को जल छोड़कर चला जाता है, संसार का जो कुछ भी है वो आपको एक दिन छोड़कर जाने वाला है, जो जितना कुछ भी है वो आपको छोड़कर जाएगा। ये देह भी हमें छोड़कर चला जाता है, ये देह भी क्या जो हमारी नाड़ी है भी साथ छोड़कर चली जाती है। नाड़ी तो दूर है, जो अपनी नाड़ी है वो क्या साथ देगी? ये नाड़ी भी साथ नहीं देती है, संसार का हर वस्तु हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं मेरा शरण, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो हमारे परम सुहृद हैं लेकिन हम उनको भूल जाते हैं और हम नकली मित्र बनाते हैं। जो परम सुहृद हैं उनका हमें अनुभव नहीं हो रहा है, उनको हम भुला देते हैं, और जो हमारा साथ छोड़ने वाले हैं उनका साथ हम पकड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान को सदा स्मरण रखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का साथ का अनुभव करेंगे तो हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा, दुख में भी हम दुखी नहीं होंगे। तो ये भवाटवी से निकलने के लिए सदा हमें भगवान के साथ का अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में है, तब भवाटवी से हम पार हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। अब समय करने का समय नहीं है, प्रश्न करने का समय बीत चुका है। लेट हो जाए।